अध्याय 25 पवित्र आत्मा एक वायदा। जैसे सबसे पहले शिष्य को मिली, वैसे ही आज भी पवित्र आत्मा का वायदा हमारे लिए भी है। परमेश्वर आज भी स्त्री व पुरुषों को उस शक्ति से परिपूर्ण करेगा जो स्वर्ग से है। ठीक उसी तरह जब पेंतिकोस्त के दिन उन लोगों पर उतरा था जिन्होंने उद्धार का वचन सुना था, इसी प्रकार समय भी उसकी आत्मा और उसका अनुग्रह उन सभी को मिलेगा जिन्हें इसकी जरूरत है और जो प्रभु को उसके वचन से ग्रहण करेंगे। पवित्र आत्मा पाने का वादा केवल किसी विशेष युग या विशेष जाति के लिए सीमित नहीं है। प्रभु यीशु कहता है कि पवित्र आत्मा का स्वर्गीय प्रभाव उसके शिष्यों के साथ अंत तक था। पेंतिकोस्त के दिन से लेकर आज के दिन तक वह सहायक उनके पास भेजा गया है जिन्होंने अपने आप का संपूर्ण प्रभु एवं उसकी सेवकाई के काम के लिए किया है। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोगों को पवित्र आत्मा का उपहार देकर उन्हें तरोताजा करूं, ताकि वे प्रभु के प्रेम में बपतिस्मा पाकर नए हो जाएं। कलीसिया में पवित्र आत्मा की कमी होनी ही नहीं चाहिए। प्रभु यीशु के स्वर्ग उठा लिए जाने का बाद पवित्र आत्मा उन लोगों पर आया जो उसकी प्रतीक्षा प्रार्थना करते हुए विश्वास व सामर्थ्य की परिपूर्णता के साथ जो ही एक हृदय तक पहुंचा कर रहे थे। भविष्य में पृथ्वी पूरी तरह से परमेश्वर की महिमा से भर जाएगी, एक स्वर्गीय प्रभाव जो आगे आगे चलेगा जगत के उन लोगों जो सत्य के द्वारा पवित्र ठहराए गए हैं। पूरी पृथ्वी चारों ओर से प्रभु अनुग्रह की सामर्थ्य से घिर जाएगी। पवित्र आत्मा मनुष्यों के हृदय पर कार्य करने को है, परमेश्वर की बातों को लेकर मनुष्यों तक उनको पहुंचाने का काम। ये सत्य है कि अंत के दिनों में जब परमेश्वर का काम अपनी समाप्ति पर होगा, तब बड़े जोरदार ढंग से समर्पित विश्वासियों द्वारा पवित्र आत्मा की अगुवाई में परिश्रम होगा जो विशेष रूप से स्वर्गीय चिन्हों की सहभागिता से पूर्ण होगा। उस समय प्रारंभिक और अंतिम वर्षा जो पूर्वी देशों में बीज बोने के समय और फसल तैयार होने तक गिरती है, इब्री धर्म प्रचारकों की भविष्यवाणी के अनुसार आत्मिक अनुग्रह की भरपूर बारिश जो जरूरत से ज्यादा होगी वह कलीसिया पर बरसेगी। स्वर्ग से पवित्र आत्मा की वर्षा प्रेरितों के दिनों से जो प्रारंभ में हुई थी वह पहली वर्षा थी और उसके परिणाम भी बड़े महिमामयी हुए। और अब अंत के समय में पवित्र आत्मा की उपस्थिति सच्ची कलीसिया के साथ होगी। प्रेरितों के दिनों में आत्मा का उड़ेला जाना पहली वर्षा थी जिसके परिणाम भी महिमापूर्ण और प्रशंसा के योग्य थे, किंतु अंतिम वर्षा तो और भरपूरी से होगी। इन दिनों में रहने वालों के लिए क्या वायदा किया गया है? हे आशा से जुड़े हुए कैदियों, उस शक्तिशाली प्रभु की ओर फिरो। मैं आज भी कहता हूं कि मैं तुझे दुगनी वर्षा भेजूंगा। अपने प्रभु से पवित्र आत्मा भेजने के लिए कहो कि पिछली वर्षा समय आने पर करे। अतः प्रभु सफेद बादलों को बनाएगा और उन पर वर्षा की बौछार करेगा। वह बौछार मैदान की घास के एक एक कतरे को मिले। परमेश्वर की बहुतायत से देने की इच्छा। प्रभु उसकी संतान पर पवित्र आत्मा की बारिश बहुतायत से करना चाहता है जो उसकी सेवा करते हैं, उन माता पिताओं से भी ज्यादा जो अपने बच्चों को अच्छे उपहार देते हैं। हर समय, हर जगह, हर दुख में, तंगी व परेशानियों के समय जब बाहर केवल अंधकार और भविष्य अनिश्चित दिखाई पड़ता और हम अकेला और असहायक महसूस करते हैं, तब प्रभु यीशु हमारे सहायक भेजेगा जो हमारी विश्वास से की गई प्रार्थना का जवाब होगा। परिस्थितियां शायद हमें हमारे सांसारिक मित्रों से अलग कर दें, किंतु कोई भी परिस्थिति, कोई दूरी हमें अपने स्वर्गीय सहायक से अलग नहीं कर सकती। हम चाहे जहां रहें, वह हमेशा हमारे दाहिनी ओर हमें सहारा देने, हिम्मत दिलाने, ऊंचा उठाने और प्रसन्न करने के लिए साथ होगा। सुबह दर सुबह सुसमाचार का स्वर प्रभु के कदमों में डाला जाता और अपने पूर्ण समर्पण की वाचा को मजबूत करने का काम करता है, तो वह उन्हें पवित्र आत्मा की उपस्थिति अपनी मजबूती व ताजगी और पवित्र करने वाली शक्ति के साथ प्रदान करता है। जैसे वे प्रतिदिन प्रभु का काम करने को कदम बाहर निकालते, उन्हें निश्चितता रहती है कि एक अनदेखी शक्ति जो पवित्र आत्मा है उन्हें इस योग्य बनाती है कि वे परमेश्वर के साथ परिश्रम करने में साथ हों।
हम लोग पवित्र आत्मा की शक्ति के काम करने के समय में रह रहे हैं जो स्वयं को मनुष्यों के जरिए सामने लाने की कोशिश करती है। इस प्रकार
जगत में अपना प्रभाव बढ़ा रही है। प्राप्त करने की शर्तें। पवित्र आत्मा उन सब पर आएगा जो जीवन की रोटी की भीख मांगे रहे हैं, ताकि अपने पड़ोसियों को दे सकें। जब हम अपने हृदय को प्रभु की एकता में मिलाने के लिए लाते हैं और अपना जीवन उसके कामों को करने में लगाते हैं, तो जैसे चेलों पर पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा था, वैसे ही हम पर भी उतरेगा। परमेश्वर की ओर ऐसी कोई रुकावट या मनाही नहीं है कि उसके अनुग्रह का धन पृथ्वी पर रहने वाले मानवों तक न पहुंचे। पवित्र आत्मा हमारी मांग और उसकी प्राप्ति की प्रतीक्षा करती है, क्योंकि यही वो साधन है जिसके द्वारा हमें सामर्थ्य मिलता है। तो हम उस आत्मा को पाने के भूखे और प्यासे क्यों न हों? हम उसकी बात क्यों न करें, प्रार्थना करें और उसके बारे में प्रचार क्यों न करें? यदि वायदे का पूरा किया जाना जैसे दिखाई देना था, वैसे दिखाई नहीं देता। उसका कारण यह है कि वायदे को जैसा सराहा जाना था, नहीं सराहा गया। यदि सभी पवित्र आत्मा से भर जाते, पवित्र आत्मा के नित्य बपतिस्मा से प्रत्येक कार्यकर्ता को अपनी प्रार्थना प्रभु के सामने रखना चाहिए। मसीही कार्यकर्ताओं के समूहों को मिलकर विशेष सहायता के लिए, स्वर्गीय बुद्धि के लिए प्रार्थना करना चाहिए कि वे जान सकें कि किसी भी काम को किस प्रकार सुनियोजित कर बुद्धिमानी से कार्य रूप भी परिवर्तित करें। विशेषतया उन्हें प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु उन चुने हुए राजदूतों को मिशन कार्य करने जाने के लिए अपनी पवित्र आत्मा का अधिकाई से बपतिस्मा दें। सारे मसीहियों को आपसी मतभेद दूर कर अपने आप को परमेश्वर को सौंप देना चाहिए, ताकि खोए हुओं को बचा सकें। उन्हें विश्वास से प्रार्थना में प्रभु से उन आशीषों को मांगो जो परमेश्वर ने देने का वादा किया है, और वे तुम्हें मिलेंगी। शिष्यों ने अपने लिए आशीषें नहीं मांगी, वे तो आत्माओं के बोझ से दबे थे। सुसमाचार दुनिया के कोने कोने में पहुंचाना था, अतः उन्होंने सामर्थ पाने, बहुतायत से पाने की प्रार्थना की जो प्रभु यीशु ने वायदा किया था। तब ऐसा हुआ कि पवित्र आत्मा उड़ेला गया और हजारों लोग एक दिन में प्रभु में बपतिस्मा लिए, जिन्होंने अपने आप को बदला। प्रभु यीशु ने अपनी कलीसिया की पवित्र आत्मा का दान देने का वायदा किया है, और ये वायदा प्रथम चेलों के साथ साथ हमारे लिए भी उसी प्रकार दूसरे वायदों की तरह है जो शर्तों पर दिया गया है। अनेक लोग हैं जो इन वायदों पर विश्वास करते और प्रभु से इन वायदों को मांगते हैं। वे मसीह के बारे में और पवित्र आत्मा के बारे में बात करते हैं, तब भी उन्हें कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि वे अपनी आत्मा को स्वर्गीय माध्यमों की अगुवाई और उनके कब्जे में समर्पित नहीं करते। हम पवित्र आत्मा हमें इस्तेमाल करता है। आत्मा के द्वारा ही परमेश्वर उसके लोगों में काम करता है, उसकी इच्छा और उसको भाने वाले काम करने के लिए। किंतु कई लोग इस बात को नहीं मानते, वे स्वयं सब काम करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें ये स्वर्गीय उपहार नहीं प्राप्त होता। केवल कई लोग इसे पाते हैं जो पूरी तरह परमेश्वर पर निर्भर होते और उसके अनुग्रह और आदेशों का पालन करने को तैयार रहते हैं। परमेश्वर का सामर्थ्य प्रतीक्षा करता है कि वे मांगे और वह उन्हें प्राप्त हो। ये वायदे के अनुसार आशीषें इसके साथ खींची चली आती है। ये प्रभु यीशु के अनुग्रह की बहुतायत के कारण भी जाती है, और वो हर उस व्यक्ति को उसकी सामर्थ्य के अनुसार जितना चाहे प्रदान करता है, और योग्य व्यक्ति उसे पाता है। प्रभु यीशु की आत्मा का बहुतायत से उड़ेला जाना, जो पूरी पृथ्वी को उसकी महिमा से रोशन कर देता है, तब तक हमारे पास नहीं आएगा जब तक उसके लोग वचन की रोशनी से रोशन नहीं होंगे, कि वे जान लें अपने अनुभव के द्वारा कि प्रभु के साथ मिलकर परिश्रम करने का क्या अर्थ होता है। जब हमारे पास संपूर्ण मन से समर्पण पाया जाता है प्रभु का सेवक होने के लिए, तब परमेश्वर उसकी सत्यता को जानता और अपनी पवित्र आत्मा को बेपनाह वर्षा करता है। पर ऐसा तब नहीं होगा जबकि कलीसिया का एक बड़ा हिस्सा परमेश्वर के साथ परिश्रम करने में शामिल नहीं है। सफलता के लिए जरूरी पवित्र आत्मा की उपस्थिति परमेश्वर के लोगों के साथ सच्चाई की उद्घोषणा करने में शक्तिशाली साबित होगी, जबकि संसार का सारा आदर व महिमा इसे उतना शक्तिशाली नहीं बना सकते। परमेश्वर हमें काम करने के लिए अपनी ताकत पर भरोसा रखकर करने को नहीं कहता। उसने स्वर्गीय सहायकों को हर एक आपातकालीन स्थिति का सामना करने के लिए दिया है, जो स्वयं मनुष्यों की ताकत व साधनों से मेल नहीं खाते। वो पवित्र आत्मा देता है किसी भी मुसीबत में मदद करने के लिए, हमारी आशा और सामर्थ्य थ्रेशोल्ड को मजबूत बनाने, हमारे मस्तिष्क को रोशन करने और हृदयों को पवित्र बनाने के लिए। पवित्र आत्मा के उतरने के बाद शिष्य प्रभु के प्रेम से इतने भर गए और उनके प्रति भी, जिनके लिए प्रभु येशु ने अपनी जान दी, जिससे कि लोगों के हृदय उन प्रार्थनाओं से, उन शब्दों से पिघल जाए जो प्रार्थना में कहे गए और वचन जो उन्हें सुनाए गए। उन्होंने आत्मा की सामर्थ्य में होकर कहे, उस सामर्थ्य में आकर कहें जिससे हजारों लोगों ने अपना मन फिराया। परमेश्वर के कार्य के लिए जो स्वार्थी न हो, पवित्र आत्मा को अपने हृदय में काम करने और एक पूर्ण समर्पित जीवन जीने वाला हो, उसके लिए काम की कोई सीमा नहीं। उसका जीवन प्रभु के लिए उपयोगी है, वो कहीं भी काम में ला सकता है। पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा को उड़ेला जाना था परिणाम लाया था। हमारे उद्धारकर्ता के उठने से जो खुशी का सुसमाचार उस समय के अनजान जगत के बीच सर्वोच्च ऊंचाई तक पहुंचाया गया, उनके परिश्रम के कारण कलीसिया में चुने हुए लोगों का समावेश हुआ, जिन्होंने जीवित वचन और अपने आप को समर्पित कर अन्य लोगों को आशा दिलाई, जिससे उनके हृदय खुशी और शांति से भर गए। सैकड़ों लोगों ने परमेश्वर का राज्य करीब है के नारे को बुलंद किया। उन्हें किसी प्रकार का डर या धमकी प्रचार करने से रोक न सकी। प्रभु ने उनके द्वारा लोगों से बातें की और जहां कहीं वे गए, बीमार, चंगे हुए, गरीबों को आनंद का सुसमाचार सुनाया गया। जब मनुष्य अपने आप का पवित्र आत्मा के हाथों में सौंप देता है, तो परमेश्वर का काम बड़े शक्तिशाली तरीके से होता है। पवित्र आत्मा आध्यात्मिक जीवन जीने का श्वास है। पवित्र आत्मा के साथ सहभागी होने का अर्थ है प्रभु येशु के जीवन के सहभागी होना। ये पवित्र आत्मा पाने वाले को प्रभु येशु के चरित्र में रंग लेता है। तब केवल वही जिसे परमेश्वर के बारे में इतना सिखाया गया है और जो पवित्र आत्मा को आंतरिक शक्ति के रूप में पाते हैं और जिनके जीवन में प्रभु येशु का चरित्र दिखाई पड़ता है, वे ही प्रभु के प्रतिनिधि के रूप में खड़े हो सकते, जो कलीसिया के लिए सेवकाई करते हैं। जल्दी ही बड़े विशेष परिवर्तन लोगों में दिखाई देंगे और परमेश्वर के लोग पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, जिससे स्वर्गीय बुद्धि से वे इस युग की कठिन व अचानक आने वाली विपत्तियों का सामना कर सकें और जहां तक हो सके इस जगत को धर्म भ्रष्ट करने वाली ताकतों को नष्ट करो। यदि कलीसिया जागृत है, सो नहीं रही, प्रभु सेवक यदि प्रार्थना करते और जागते रहते हैं, तो शायद वे प्रभु की ज्योति को समझने और शत्रु की चालों को जान पाएंगे। वायदा जो सराहा न गया। प्रभु येशु ने कहा था कि पवित्र शक्ति की ताकत उसके चेलों के साथ अंत तक रहेगी, किंतु इस वायदे को उस तरह नहीं सराहा गया जिस प्रकार होना चाहिए था। इसीलिए पवित्र आत्मा से परिपूर्णता उसके चेलों में दिखाई नहीं दी जैसी दिखाई देना थी। पवित्र आत्मा के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, इसका परिणाम नहीं हुआ जो सोचा जा सकता है। धार्मिकता की कमी, आध्यात्मिक अंधकार, धार्मिकता का पतन और मृत्यु। छोटी बातें भी ध्यान देने योग्य होती है। स्वर्गीय शक्ति जो कलीसिया की बढ़ोत्तरी के लिए अत्यंत आवश्यक है, वहीं कलीसिया को आगे बढ़ाती है। यही अपने साथ अन्य आशीषों को भी एक के बाद दूसरी लेकर आती है, किंतु इन सब की कमी है, जबकि यह भरपूरी से प्राप्त की जा सकती है। अंतिम वर्षा की प्रतीक्षा में बैठे कुछ आलसी लोग।
कुछ ऐसे भी हैं जो वर्तमान सुअवसरों को बुद्धिमता पूर्वक सुधार लाने के बदले बेकार किसी विशेष समय, जब उन पर आत्मिक वर्षा होगी जो उन्हें तरोताजा करेगी और तब वे दूसरों को वचन की रोशनी करेंगे, वे केवल प्रतीक्षा कर रहे हैं। वास्तव में ऐसे लोग वर्तमान में अपने कर्तव्यों और अवसरों को नकार देते और इस प्रकार अपनी रोशनी को कम कर देते हैं जब वे उस समय की प्रतीक्षा करते हैं, किंतु उस बीच कोई काम नहीं करते जिससे कि उस विशेष आशीष को प्राप्त कर सकें जिसके द्वारा वे बिल्कुल बदल जाएंगे और सेवा करने के योग्य होंगे। यीशु ख्रीस्ट के बाद आने वाला। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु का प्रतिनिधि है।
किंतु मनुष्य के व्यक्तित्व के अनुरूप नहीं और इसीलिए स्वतंत्र हैं। मानव के रूप में होते हुए प्रभु यीशु हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते थे, इसलिए उनका विचार था कि पिता के पास जाकर पवित्र आत्मा को पृथ्वी पर उसके बाद आने वाले के रूप में भेजें। तब कोई भी उसकी स्थिति अथवा प्रभु यीशु से व्यक्तिगत संबंध होने का फायदा नहीं उठा सकता था। आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु उद्धारकर्ता सब तक पहुंच सकेगा। इस अर्थ में वो उन लोगों के करीब होगा, अपेक्षा इसके कि वो स्वर्ग न चला गया हो। पवित्र आत्मा प्रारंभ से ही कार्यरत। परमेश्वर प्रारंभ से ही उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा मानवीय सहायकों के हाथों अपने सारे उद्देश्यों को पाप में गिरी मानव जाति के लिए उपयोग में लाकर काम पूरा करता है। यह धर्म प्रचारकों के जीवन में देखने को मिलता था। जंगल में परमेश्वर के लोगों को मूसा के समय परमेश्वर ने अपनी शुद्ध आत्मा उन्हें निर्देशित करने को भेजी, और प्रेरितों के दिनों में उसने पूरी सामर्थ्य से उसकी कलीसिया के लिए पवित्र आत्मा के सहायक के द्वारा बनाया। वही सामर्थ्य जो प्राचीन लोगों में पाया गया, जिसने काजेब और यहोशू को भरोसा व साहस दिलाया और जिसने प्रेरितों के कामों को प्रभावशाली बनाया, उसी परमेश्वर के बच्चों को भी हर एक युग में भरोसेमंद बनाया। ये केवल पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा ही संभव हो पाया कि अंधकार से भरे कष्टदायक युग में वॉल्डेंशियन मसीहियों में बदलाव लाने के लिए रास्ता तैयार करने में मदद की। ये वही सामर्थ्य थी जिसने संभ्रांत स्त्री व पुरुषों को, जिन्होंने आधुनिक सेवा कार्य को स्थापित करने का रास्ता दिखाया और बाइबल को विभिन्न देशों और लोगों की भाषाओं और प्रांतीय भाषाओं में अनुवाद करने में किए गए परिश्रम को सफल बनाया।